नमस्कार भारत, आज है अगस्त महीने की 7 तारीख, दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षकों के नाम पर उपद्रव करने वाले तत्वों को दिया कड़ा संदेश। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में है अंतर।
ये कहना कि इसमें असामाजिक तत्व जुड़ गए हैं, ये एक तरह से उनकी बचत करने जैसा दिखता है।
असम में उग्रवादी हमले के बाद सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज जाएंगे कोकराझार। न्यूज मेकर्स में सुनिएगा मैराथन धावक बुधिया सिंह को, जिन पर बनी फिल्म इसी हफ्ते रिलीज हुई है।
मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मुझे कोई ट्रेनिंग दे, मैं भी ऐसा ही बोलूंगा, मुझे भागना तो बहुत ज्यादा।
होंगी रियो ओलंपिक से जुड़ी खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को गोरक्षक बताने वाले समूहों की आलोचना करते हुए कहा है कि ज्यादातर गोरक्षक गोरखधंधों में लिप्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीते महीने गुजरात के ऊना में कथित गोरक्षकों के हाथों दलितों की पिटाई के मुद्दे पर खामोश रहने पर सवाल उठ रहे थे। दिल्ली में अपने टाउन हॉल कार्यक्रम में बोलते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें खुद को गोरक्षक बताने वाले समूहों पर गुस्सा आता है। उन्होंने कहा कि बेहतर है कि ये समूह गायों को प्लास्टिक और कूड़ा खाने से बचाएं। भारतीय जनता पार्टी नेता विजय रूपाणी आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद वे ये जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। रूपाणी आनंदीबेन पटेल की सरकार में मंत्री थे। दक्षिण अफ्रीका में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में सत्ताधारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को 1994 में सत्ता में आने के बाद से सबसे बड़ी हार मिली है। एएनसी जोहानसबर्ग में जीतने में तो सफल रही, लेकिन राजधानी प्रिटोरिया और पोर्ट एलिजाबेथ में विपक्षी लोकतांत्रिक गठबंधन से पिछड़ गई है। राष्ट्रपति जैकब जूमा ने कहा है कि नतीजे बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। उन्होंने कहा,
We are proud of how South Africans managed their renewal.
हमें दक्षिण अफ्रीकी लोगों के सत्ता परिवर्तन करने और फिर से जनादेश देने पर गर्व है। ये मतपत्रों के जरिए शांतिपूर्वक किया गया है। हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि यदि हम मिलकर काम करें और मेहनत करें तो हम एक निष्पक्ष, न्यायप्रिय, समान अधिकारों वाला और खुशहाल दक्षिण अफ्रीका बना सकेंगे। ये थे राष्ट्रपति जैकब जूमा के शब्द। पूर्वी यूक्रेन में एक अलगाववादी नेता एक कार बम धमाके में घायल हो गए हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि ये हमला हत्या का प्रयास था। स्वघोषित रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क के नेता इगोर प्लोतोनित्स की धमाके के वक्त अपनी कार में ही थे। एक रूस समर्थक समाचार एजेंसी का कहना है कि उन्हें आई चोटें जानलेवा नहीं हैं। इगोर के समर्थकों का कहना है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन की सरकार है, जबकि यूक्रेन ने ये आरोप नकार दिए हैं। सीरिया के पूर्वी शहर एलेप्पो में विद्रोहियों का कहना है कि वो सेना की घेराबंदी तोड़ने में कामयाब रहे हैं। सीरियाई सेना की घेराबंदी में पूर्वी एलेप्पो में करीब 2.5 लाख लोग फंसे हैं। ब्रिटेन स्थित सीरिया पर नजर रखने वाले संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने विद्रोहियों के दावों का समर्थन किया है। वहीं सेना का कहना है कि उसने लड़ाकों को फिर से खदेड़ दिया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कथित गोरक्षकों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर दुकान खोलकर बैठे लोगों पर उन्हें गुस्सा आता है। उन्होंने राज्य सरकारों से गोरक्षकों का चोला पहने असामाजिक तत्वों का डॉजियर तैयार करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर नजर आता है। सुनिए निखिल रंजन की रिपोर्ट।
गुजरात के ऊना में 4 दलितों की पिटाई के बाद से गरमाए गोरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी चुप्पी तोड़ दी। दिल्ली में एक कार्यक्रम में मोदी ने कथित गोरक्षकों को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसे लोगों पर काफी गुस्सा आता है।
गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं।
ऊना की घटना के बाद से गुजरात में दलित समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं। दलित समुदाय ने बीते हफ्ते अहमदाबाद में हुई एक रैली के जरिए ऐलान किया था कि वो अब मरे पशुओं को उठाने और सीवर की सफाई जैसे पारंपरिक काम नहीं करेंगे। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। विपक्षी दल तो सवाल उठा ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व से कथित गोरक्षकों को कड़ा संदेश देने की मांग उठाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल माई गॉव के 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकारों से कहा कि वो गोरक्षकों का चोला पहने असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी जुटाएं।
मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं।
पार्टी मंच पर कथित गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री के रुख से काफी खुश हैं। उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह ने BBC से कहा,
जब भी दलितों पर अत्याचार होता है उनकी एक अपेक्षा होती है कि दलित समाज का कोई ना कोई व्यक्ति उनके बीच उनकी बात को रखेगा। हम लोगों ने ये बात उठाई, जब भी कोई ऐसी बात होगी हम लोग कहेंगे हमारा संरक्षक कौन है, हमारे संरक्षक प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी अपने हाथ में सक्षम है निर्णय लेने के लिए, बात कहने के लिए। ऐसा मैं नहीं मानता कि हमारी वजह से उन्होंने किया है, लेकिन उनका निर्णय बिल्कुल सही है और उनकी दृष्टि सही है।
BJP के नेता प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सवाल किया है कि मोदी इस मुद्दे पर अब तक क्यों चुप थे। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा,
उन्हीं की पार्टी और संघ से जुड़े हुए संगठन इसका नेतृत्व करते आ रहे हैं। ये कहना कि इसमें असामाजिक तत्व जुड़ गए हैं, ये एक तरह से उनकी बचत करने जैसा दिखता है। अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में ईमानदार हैं इस मुद्दे पर जो उन्होंने कहा है, तो ऐसे तमाम लोग जो इस तरह की वारदातें अभी तक करते आ रहे थे, उन पर क्या कार्रवाई प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने की है वो बताएं। और भविष्य में उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी, इस बात का विश्वास दिलाएं।
कांग्रेस को लगता है कि मोदी का बयान इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी इसका अंदाजा बाद में होगा। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री के बयान के बाद गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा रुकेगी।
ब्यौरा सुना रहे थे निखिल रंजन। प्रधानमंत्री ने कथित गोरक्षकों को दिया कठोर संदेश, ये बता रहे थे निखिल रंजन। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह से और सबसे पहले पूछा कि कथित गोरक्षकों पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया क्या डैमेज कंट्रोल की कोशिश है।
इस माहौल में तो यही लगेगा कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब भी इस पर कुछ मोदी जी मुंह खोलेंगे तो यही कहेंगे। देखिए, ये ठीक है कि वो RSS से रहे हैं, हिंदूवादी हैं, लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे, जब मोदी गुजरात के भी मुख्यमंत्री थे, अहमदाबाद में डिस्प्यूटेड रिलीजियस प्लेस पर उन्होंने सबसे पहले कार्रवाई की थी। तो इस तरह के सवालों पर का रवैया यही होता है।
इस तरह के जितने मुद्दे होते हैं, ये गोरक्षा का मामला था, इसके पहले रोहित वेमुला खुदकुशी मामला हो या दादरी का जो केस था, अखलाक अहमद की मौत का मामला, इन सारे मुद्दों पर कोई भी अपना रिएक्शन देने में, जबकि प्रधानमंत्री लगातार कई मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर उनका रिएक्शन काफी देर से आता है।
हाँ, एक ही चीज है मुझे खलती है, जो बार बार मोदी जी इन विषयों पर तब बोलते हैं जब उसको कुरेदा जाता है। मुखिया होने के नाते देश के ऐसे ज्वलंत सवालों पर जब आपको लग रहा है ये चिंगारी ही सही, वो आग लगाने की काबिलियत, मतलब आग लगाने के उसमें वो दुर्गुण है, तो आपको उस पर मुंह खोल देना चाहिए। इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई आपसे सवाल करे तभी आप उसमें मुंह खोले। आश्चर्य यह होता है कि जिस आदमी ने 2014 में जब मैनिफेस्टो बन रहा था BJP का, उसमें से वो सारे तमाम विवादास्पद मुद्दे उन्होंने निकलवाए, और याद होगा कि वो डिले हुआ था वो मैनिफेस्टो, बाद में वो मैनिफेस्टो जारी हुआ जिसमें बिल्कुल मंदिर को सबसे नीचे लिया गया कि संविधान के तहत इसका हल ढूंढा जाएगा। लेकिन दुख इसी बात का है कि जब जब इस तरह के जिनको आपने कहीं भी मैनिफेस्टो में नहीं रखा, लेकिन दो साल में सबसे ज्यादा सुर्खियों में वही सब्जेक्ट रहे और वही तमाम ताकतें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, धारा 370 का सवाल हो, ये जब उभरते रहे तो मुझे लगता है कि बिना किसी के उकसावे के भी मोदी जी को या बिना किसी के पूछे जाने के ऊपर भी इस देश के मुखिया को जरूरत पड़ने पर अपना मुंह खोलना चाहिए था।
आपको क्या लगता है कि ये जो बयान आया है प्रधानमंत्री का, इसके बाद स्थितियां कुछ बदल सकती हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान इस तरह की ध्रुवीकरण वाली बातें अक्सर देखने में आ रही हैं?
देखिए, चाहे वो कोई भी कितना भी पार्टी वाला कैसा भी हो, एक बात आप जानते हैं कि विनेबिलिटी हर पार्टी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर। देखिए, चुनाव में कोई हारने के लिए नहीं जाता है, और इस बात का लेखा जोखा जरूर किया जाता है कि कहीं मेरे बयान से कोई नुकसान उठाने के लिए कोई बयान नहीं देता है। बीजेपी ने भी वो किया होगा। अब हो सकता है, हमेशा चुनाव के पहले इसके देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कुछ फायदे मिलते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। हालांकि मुझे लगता है ये कोई डेसिसिव फैक्टर नहीं होता, क्योंकि हमेशा किसी एक बात को लेकर ध्रुवीकरण हो जाए, मुझे ऐसा लगता नहीं है।
वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को देश के हालात बिगाड़ने वाले मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करने में देरी नहीं करनी चाहिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई से शुरू हुआ तनाव और हिंसा का दौर अब तक पूरी तरह थमा नहीं है। हिंसा की शुरुआत हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की एक मुठभेड़ में मौत के बाद हुई थी। अब तक हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग जख्मी हुए हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से आज के जमीनी हालात के बारे में बात की।
जी देखें, एक महीना तो आज होने जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो तीव्रता उस दिन थी जब बुरहान वानी की एक ऑपरेशन में मौत हो गई और हजारों लोगों ने उनके जनाजे में जाने की कोशिश की और उनकी मुठभेड़ हो गई सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के साथ, तो वही तीव्रता आज भी बनी हुई है और टोटल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। क्योंकि जब से ये प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ है 2008 से, तब से 4-5 बार ऐसे जो है स्पेल्स ऑफ एजिटेशन हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है, पहली बार लगातार एक महीने तक कर्फ्यू प्रतिबंध, इंटरनेट पर प्रतिबंध और दूसरी चीजों का जो सिलसिला है वो जारी है। तो इसलिए इंस्पेक्टर जनरल जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जावेद गिलानी, उन्होंने भी सीधे सीधे ये मान लिया है ऑन रिकॉर्ड कि जो तीव्रता 9 जुलाई को थी वही तीव्रता आज भी इस प्रदर्शन की।
लेकिन कोर्ट में सरकार जानकारी देती है कि स्थिति घाटी में सुधर रही है, विपक्ष लेकिन लगातार सवाल उठा रहा है, तो राजनीतिक घटनाक्रम क्या कुछ चल रहा है वहाँ?
देखें, एक बात तो ये है कि जनता में पहले से ही काफी गुस्सा था, तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, इस स्टेटमेंट पर भी काफी ज्यादा गुस्सा है जनता में। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसने भी कहा है कि ये आंखें बंद करके कश्मीर पॉलिसी बनाने वाली बात है, तो इसमें काफी राजनीति गर्मा गई है। क्योंकि भारत में जो मेन अपोजिशन है कांग्रेस, उनके जो यहाँ स्थानीय नेता हैं सैफुद्दीन सोज हैं, मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में, उन्होंने कल शाम को सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वो अनकंडीशनल टॉक्स का आरंभ करें अलगाववादियों के साथ और ये बात अलगाववादियों के लिए छोड़ दें कि वो किस तरह से युवा प्रदर्शनकारियों के साथ बात करते हैं।
जब से स्थिति घाटी में बिगड़ी है तब से राज्य सरकार का जो रोल रहा है उस पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं, फिलहाल क्या उसमें कोई तब्दीली दिखती है?
जी देखिए, राज्य सरकार का जहां तक सवाल है, पहली बार जम्मू कश्मीर की राजनीतिक इतिहास में कोई महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके जो है शपथ ग्रहण के बाद से ही यहां पे टर्मोइल चल रहा है। लेकिन इस वाले प्रदर्शन की जो लहर है इसमें डे वन से उन्होंने एक लाइन ले लिया है, वो ये है कि वो लोगों से ये कहती है कि प्रदर्शनों से कुछ नहीं निकलेगा, और दूसरी तरफ वो यहां की सारी गड़बड़ के लिए पाकिस्तान को दोषी मानती है। और इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि जो 24 जुलाई को जब यहां पे गृह मंत्री राजनाथ सिंह आए थे तो उन्होंने 25 को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस तरह से भी मुख्यमंत्री चाहें वो स्थिति से निमट सकती हैं और जिसके लिए केंद्र सरकार का उनको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा।
जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात की जानकारी दे रहे थे श्रीनगर संवाददाता रियाज मसरूर। आगे बढ़ते हैं। असम के कोकराझार में शुक्रवार को हुए उग्रवादी हमले में मरने वाले आम नागरिकों की संख्या 14 हो गई है। इस हमले को NDFB संघ विजित नामक अलगाववादी गुट के कैडरों ने अंजाम दिया था, जिसकी पुष्टि राज्य सरकार ने कर दी है। मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हालात का जायजा लेने के लिए आज कोकराझार का दौरा करेंगे। सुनिए गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
हमले के बाद जहां इलाके में मातम का माहौल है, वहीं दहशत में जी रहे लोगों में फिर से भरोसा जगाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। असम पुलिस के महानिदेशक मुकेश सहाय ने बीबीसी से कहा,
अभी नियंत्रण है मैं और हम जो है, हम लोग ने वहां अपने विजुअल पुलिसिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेज भी इनको किया है। ये तो एनडीएपीएस का ये तो कैडर जो कल वही आर्म कैडर था इनका, ये तो वही न्यूट्रलाइज हो गया। घटना के पास से कुछ कागजात वगैरह मोबाइल वगैरह जो मिले हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एनडीएपीएस का कैडर था।
इस बीच शनिवार को एनआईए की 4 सदस्यीय टीम ने घटना स्थल का मुआयना कर जाँच शुरू कर दी है। एनडीएबी संघविजित का ये गुट पहले भी राज्य में इस तरह के बड़े हमले कर चुका है। अपने कई कैडरों के मुठभेड़ में मारे जाने और कईयों को गिरफ्तार कर लेने के बाद ये गुट काफी समय से हमले की ताक में था। इस चरमपंथी हमले के बाद उत्पन्न स्थिति को नियंत्रण करने में जुटे राज्य सरकार के मंत्री हिमंत विश्व शर्मा कहते हैं, पुलिस की 7 कंपनी को इलाके में भेजा गया है। केंद्र से और अधिक सुरक्षा बलों की टुकड़ियां मांगी गई हैं। चरमपंथियों के खिलाफ तीव्र गति से अभियान चलेगा। इस तरह निर्दोषों की हत्या को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये थे हिमंत विश्व शर्मा के शब्द। निर्दोष लोगों पर हमले की इस घटना को बीते 42 घंटे से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक अभियान में जुटी सुरक्षा बलों को किसी तरह की सफलता नहीं मिल पाई है। आमतौर पर राज्य में सक्रिय चरमपंथी गुट 15 अगस्त जैसे विशेष दिवसों पर हिंसा फैलाने की कोशिश करते रहे हैं, लिहाजा समूचे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। असम में काफी समय के बाद इस तरह का ये एक बड़ा चरमपंथी हमला हुआ है और प्रदेश में आई भाजपा सरकार को ऐसी राष्ट्रीय विरोधी ताकतों से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति के तहत आगे की सुरक्षा व्यवस्था संभालनी होगी। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
एक दशक पहले 4 साल के एक बच्चे ने 65 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। ओडिशा के इस मैराथन धावक बुधिया सिंह के जीवन पर बनी फिल्म इसी हफ्ते रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है बुधिया सिंह बॉर्न टू रन। बुधिया सिंह अब किशोर हो गए हैं। अपने कोच बिरंची दास के निधन के बाद अब वो कैसे हैं, उनका दौड़ने का जुनून अब कैसा है, यही सब जानने के लिए हमारी सहयोगी सुप्रिया सोगले ने उनसे खास बातचीत की।
हाय बुधिया, बीबीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितनी यह मेमोरी आपको, आपकी याददाश्त है बचपन की जब आप भागते थे, याद है आपको?
मैम उस टाइम मैं जब छोटा था उस टाइम मैं भाग रहा था, उसका बाद में मुझे याद है कि थोड़ा थोड़ा याद है, ज्यादा नहीं याद है।
अच्छा, अपने कोच के बारे में क्या क्या याद है आपको?
मैम कोच के बारे में याद है कि मैं, वो मुझे ट्रेनिंग देते थे और वो बोलते थे कि यहाँ सुबह उठ जाना और प्रैक्टिस करने तैयार हो जाना। वो मुझे जब मेरा स्कूल संडे को छुट्टी हो जाता संडे में मुझे रोड में भागने के लिए ले जाते थे और पूरी लॉन्ग डिस्टेंस ले जाते थे और भागने आने के बाद वो मुझे मसाज कर रहे थे और खाना पीना देते थे और 2 घंटा स्विमिंग करते थे और वो मुझे खुद पढ़ाई भी कर सकते हैं।
विद्या, आपको कब पता चला आपके इतने फेमस हो आप?
मैम छोटे में नहीं पता, अभी मुझे जब 11 और 12 सालों का थोड़ा सा मालूम है मैं इतना फेमस हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त भी बताता है विद्या तो इतना क्यों भाग रखता है।
और उसके बाद जब आपके कोच नहीं रहे तो कितना मुश्किल हुआ उसके बाद?
मैम कोच जब चले गए, मैं हॉस्टल में बताया कि मेरा कोच चला गया और डेथ भी हो गया, वो हॉस्टल में बताया, बोले कि तुम्हारा कोच का कोई आमा जो इंचार्ज है वो बोले कि तुम्हारा कोच का डेथ नहीं हुआ, वो मुझे झूठ बोलने लगे। वो तो फिर उसके बाद जो हमारा न्यूज वाला आए थे उन्हें बोला बताया कि तुम्हारा कोच चला गया, मुझे बहुत दुख हुआ।
फिर जब आप गवर्नमेंट हॉस्टल में गए तो वो कैसा रहा, लाइफ कैसा था?
मैं जब हॉस्टल में गया था उस टाइम बोले कि तुम यहाँ पे आओगे और ट्रेनिंग भी अच्छा होगा और वगैरह वगैरह थिंग्स भी अच्छा होगा। वो बोले कि तुम हर वीक को तुम मम्मी के साथ जाओगे घर, फिर आ जाओ, फिर संडे को आ जाओगे, मैं साथ छोटा था, फिर संडे को आ जाओगे, फिर तुम एक दो वीक के बाद फिर घर जाओगे। उसका बाद एक साल दो साल हो गए उसका ऐसा चल रहा, और दो साल के बाद उन्होंने बताया कि तुम घर नहीं जा सकते हो। मैंने बताया क्यों, तो यहाँ पे तो बोला था कि घर में जाना बहुत जरूरी है, मैं भी छोटा जैसे आया हूँ और बोल रहे कि घर तुम जाओगे तो अच्छा होगा, और ऐसा बोल के मुझे हॉस्टल में ला गया। और अभी बता रहे हो कि हॉस्टल में ले, और मैं भी उस टाइम हॉस्टल में था। अभी वो लोग बता रहे हैं कि तुम घर भी नहीं जा सको, मेरा पास कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था, किसका साथ बोल भी नहीं सकता, वो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। और मम्मी आते थे और मुझे देख के चले जाते थे।
ट्रेनिंग के अलावा किस तरह की जिंदगी आपको मिल रहा है, मतलब किस तरह का लाइफ हो रहा है
वहाँ पे? कोई भी नहीं रहता, नहीं रहना चाहता मैम, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में थोड़ा तकलीफ है। वो जो हम बच्चे लोग को, जो प्लेयर को वहाँ पे रहते हैं, वहाँ उसको चाहिए फ्रीडम, चाहिए फ्रीडम। बिना उसका फ्रीडम छूट दिया तो उसको माइंड फ्री होगा और वगैरह वगैरह थिंग्स होगा। तो वहाँ पे हॉस्टल में कई बच्चे लोग छुप कर भी बाहर जाते हैं घूमने के लिए और फिर चले जाते हैं। वहाँ पे जब कोर्ट पकड़ देते हैं और तुम बाहर गए तो उसको हॉस्टल से निकल गया, अच्छा हुआ बुरा।
बुधिया, आपको मैराथन बॉय बोला जाता है, लेकिन आप एक सडनली एक नॉर्मल एथलीट बन गए अभी, तो किसको जिम्मेदार कहते हैं आप इसको?
मैं जिम्मेदारी किसको भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में कोच अच्छा हो, कोच अच्छा है बुरा मुझे कोई मालूम नहीं पड़ता है, वहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे अच्छा ट्रेनिंग दे, बिरंज सर जैसा कोई लोकल ट्रेनिंग दे। तो मैं उस टाइम में जो भाग रहा था वो मैं उस टाइम बोल रहा था कि जो भी मुझे पूछेगा तो और कितना भागोगे, दौड़ने के बाद वो बोल रहे कि बुधिया और कितना भागोगे, मैं बोल रहा है कि जितना भागोगे उतना भागूंगा। अभी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ट्रेनिंग अच्छा नहीं, और मेरा थोड़ा रेस्ट में हूँ क्योंकि मेरा नी थोड़ा पेन है, नी ठीक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मुझे कोई ट्रेनिंग दे, मैं भी ऐसा ही बोलूंगा, मुझे भागना तो और ज्यादा।
ये थे मैराथन धावक बुधिया सिंह, जो अपने मौजूदा हालात और प्रदर्शन से असंतुष्ट नजर आते हैं। और अब रियो ओलंपिक की खबरें। कल का दिन भारत के लिए रियो में अच्छा नहीं रहा। पहले तो पदक की सबसे बड़ी उम्मीद माने जा रहे जीतू राय निशानेबाजी के मुकाबले में फाइनल में पहुंचकर भी पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। उसके बाद अपना सातवां ओलंपिक खेल रहे लिएंडर पेस भी रोहन बोपन्ना के साथ खेलते हुए पहले ही दौर में हार गए। हालांकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। रियो से हमारे सहयोगी नौरिस प्रीतम की रिपोर्ट सुनिए।
रियो अपडेट। रियो में भारत ने आज अच्छी शुरुआत नहीं की। निशानेबाज जिनसे बहुत उम्मीद की जा रही थी, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में अपूर्वी चंदेला और आयोनिका पॉल दोनों ही क्वालिफाई तक नहीं कर सकीं। उसके बाद पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतू राव फाइनल में तो पहुंचे, लेकिन उन्हें 8वें स्थान पर ही संतुष्ट रहना पड़ा। हालांकि उनकी मुख्य इवेंट 50 मीटर एयर पिस्टल है, जिसका मुकाबला अभी होना है। फिर भी जीतू से 10 मीटर में भी उम्मीद तो की जा रही थी। पुरुषों की हॉकी में भी भारत ने अपने पहले ग्रुप बी मैच में जीत तो दर्ज की, लेकिन वो भी आयरलैंड पर, और साथ ही 3-2 के स्कोर से, जो भारत के आने वाले कठिन मुकाबलों के लिए सही लक्षण नहीं है। और शाम होते होते सौम्यजीत घोष भी टेबल टेनिस के पहले राउंड में हार गए। एथलेटिक्स में भारत का सबसे बड़ा दल आया है, लेकिन एथलीट खुश नहीं है, खासतौर से डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया। भारतीय खेल अधिकारी भी सीमा से खुश नहीं है, क्योंकि वो रूस में ट्रेनिंग के लिए गई थी। लेकिन सुनिए क्या कहना है सीमा का।
मेरी समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा बोलते कैसे हैं कि भाई सीमा वहाँ चली गई तो परेशानी है। आप देखिए रशियन कोचेज किस लिए हैं फिर इंडिया में, जितने भी हैं, यूक्रेन से हैं, रशिया से हैं, बेलारूस से हैं, वो किस लिए हैं? जहाँ मेरे को अच्छा लगेगा ट्रेनिंग का, जहाँ मेरा अच्छा सेटअप होगा, मैं वहीं ट्रेनिंग करूँगी। वो लड़की सिल्वर मेडलिस्ट है जिसके पास मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, भले ही उस पर बैन है, लेकिन वो मेरे से जूनियर लेवल से हम दोनों दोस्त हैं और उनके पूरे परिवार में ये डिस्कस का माहौल है, तो उसने मुझे बुलाया था कि भाई हम आपको ट्रेनिंग करवाएंगे।
सीमा नाराज हैं कि उनके कोच को भी भारतीय एथलेटिक फेडरेशन रियो नहीं लाया।
देखिए मैंने रिक्वेस्ट की थी फेडरेशन से भी, मिनिस्ट्री से भी, कि एक्रीडेशन अवेलेबल करवाया जाए कोच का, क्योंकि जो टेक्निकल पॉइंट, अगर एक भी मेरा पॉइंट गड़बड़ हो जाता है तो मैं कई मीटरों से हम नीचे आ जाते हैं, और उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। पहले लिस्ट में नाम था और अब नहीं है।
सीमा का ये भी मानना है कि अगर पहलवान नरसिंह यादव डोपिंग में फंसकर रियो आ सकते हैं तो शॉट पटर इंद्रजीत को क्यों नहीं लाया गया।
और जहां तक है, नरसिंह के दो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नरसिंह रियो में आ रहा है और मुझे बहुत दुख है कि इंद्रजीत नहीं आ पाए इसमें, और जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनलिस्ट होकर हमें बहुत एथलेटिक्स को ऊपर लेके गए, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों के लिए।
इस सब के बीच भारतीय खेमे को थोड़ी खुशी तब हुई जब हरदिल अजीज, सचिन तेंदुलकर भारतीय खिलाड़ियों से मिलने खेल गांव गए।
ये सभी हमारे हीरो हैं,
खास
मैं सभी को गुड विशेस यहाँ पे देने आया था, और जो हमारे इंडियन कंटिंजेंट यहाँ पे ठहरी हुई है सारे फोकस नजर आ रहे हैं और प्रिपरेशन भी उनकी अच्छी रही है, तो उनको मैं जस्ट गुड लक विश करने आया था।
क्रिकेट में तो इस तरह का विलेज नहीं होता है, वो अलग अलग रहते हैं, ये विलेज की फीलिंग कैसी लगी आपको देख के? सब लगा
बहुत अच्छी फीलिंग है। मैं एक बार मलेशिया में कॉमनवेल्थ गेम्स जब हम खेल रहे थे तभी विलेज में ही ठहरे थे, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत यादगार।
और अब क्रिकेट का अगर ओलंपिक में आने का होगा तो आपका क्या रिए?
जरूर होना चाहिए।
तो बस अब क्रिकेट प्रेमी भारतीयों को इंतजार है ओलंपिक खेलों में क्रिकेट का। नॉरिस प्रीतम, बीबीसी रियो, ब्राजील।
आज रियो में किन किन खिलाड़ियों और खेलों पर रहेगी नजर, ये बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ आदेश कुमार गुप्त हैं। जी आदेश।
जी अमरीश, अगर आज भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो आज भारत की सबसे बड़ी उम्मीद आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की स्पर्धा में दीपा कर्माकर होगी। उल्लेखनीय है कि दीपा कर्माकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्टर हैं। दीपा कर्माकर का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने साल 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा उन्होंने साल 2015 में हिरोशिमा में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता। इतना ही नहीं, दीपा कर्माकर विश्व चैंपियनशिप के फाइनल दौर तक भी पहुंची और उन्होंने वहां पांचवें स्थान हासिल किया। इसके अलावा आज भारत की महिला तीरंदाजी टीम भी अपने निशाने साधेगी। महिला रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, लैशराम बम्बैला देवी और लक्ष्मी रानी माझी शामिल हैं। निशानेबाजी में भारत के सबसे अनुभवी और कभी दुनिया के नंबर एक निशानेबाज रह चुके मानवजीत सिंह संधू ट्रैप स्पर्धा पर उतरेंगे और ये उनका चौथा ओलंपिक्स है। इसके अलावा कैनन चिनाई भी ट्रैप स्पर्धा में और महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में हिना सिद्धू अपना निशाना साधेगी। हिना सिद्धू ने साल 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और आज ही भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपना पहला मैच जापान से खेलेगी।
जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी।
BBC Olympics Rio Update BBC
और अब संक्षेप में दिल्ली से छपने वाले अखबारों की चर्चा कर लेते हैं। दिलनवाज, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, आज के अखबारों में भी रियो ओलंपिक का जो शानदार आगाज हुआ है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, रंगारंग तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं। दैनिक भास्कर लिखता है 3 अरब लोगों ने ये समारोह देखा, और वहीं भारत के स्वर्ण पदक विजेता ओलंपियन अभिनव बिंद्रा की तिरंगा थामे तस्वीर ज्यादातर अखबारों में पहले पन्ने पर नजर आ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोरक्षा से जुड़ा जो बयान दिया है वो लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता लिखता है चुप्पी तोड़कर गोरक्षकों पर हमलावर हुए मोदी। वहीं दैनिक भास्कर ने भारतीय राजनीति में ब्राह्मणों की क्या स्थिति है इस पर विश्लेषण प्रकाशित किया है, और रिपोर्ट के मुताबिक भारत जब आजाद हुआ था उस समय 13 ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे 1952 में, और उसके बाद अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो देश में सिर्फ 3 ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। इसके अलावा जनसत्ता की एक खास खबर है जिस पर ध्यान जा रहा है, वो ये है कि बीरभूम में कथित इस्लामिक स्टेट चरमपंथी गिरफ्तार हुआ है और उसने कहा है पुलिस पूछताछ में कि मुझे भारतीय का कत्ल कर उसका वीडियो बनाकर इस्लामिक स्टेट को भेजना था। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की कोई वीडियो से जुड़ी बात सामने आई हो।
जी, बहुत शुक्रिया दिलनवाज। और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार भी बता दीजिए।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को गोरक्षक बताने वाले समूहों की आलोचना करते हुए कहा है कि ज्यादातर गोरक्षक गोरखधंधों में लिप्त हैं। भारतीय जनता पार्टी नेता विजय रूपानी आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण अफ्रीका में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के अंतिम नतीजे बताते हैं कि देश की सत्ताधारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। पूर्वी यूक्रेन में एक अलगाववादी नेता एक कार बम धमाके में घायल हो गए हैं। सीरिया के पूर्वी शहर एलेपो में विद्रोहियों का कहना है कि वो सेना की घेराबंदी तोड़ने में कामयाब रहे हैं। और थाईलैंड में सैन्य सरकार की ओर से लाए जा रहे नए संविधान पर जनमत संग्रह शुरू हो गया है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से बस थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया हेमंत कुशवाहा ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और दुनिया भर की पल पल बदलती खबरों के लिए देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।